आज हम उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भारतीय विज्ञान शीर्षक पाठ पर चर्चा करने जा रहे हैं। विज्ञान की भाषा हिंदी के अंतर्गत आज का पाठ शामिल है। विज्ञान की जो परंपरा रही है हमारे देश में वह बहुत ही विशिष्ट रही है और सबसे पुरातन रही है, यह हमारे लिए गौरव की बात है। और नई शिक्षा नीति में भारतीयता की बात की गई है, अर्थात भारतीय संस्कृति और धरोहर की बात की गई है, विरासत की बात की गई है। आप जानते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वह सबसे पुरानी है, सिंधु घाटी सभ्यता से उसकी शुरुआत मानी जाती है, हड़प्पा संस्कृति का नाम आपने सुना होगा। तो उन संस्कृतियों का जब हम अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि लगभग ईसा से 3000 वर्ष पूर्व भारतीय विज्ञान का विकास हो चुका था, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई उससे ऐसे अनेक प्रमाण मिले जो यह दर्शाते हैं कि उस समय के लोगों में वैज्ञानिक दृष्टि थी और वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग भी किया जाता था। आपने कुछ नाम सुने भी होंगे, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत, या खगोल विद्या और गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, उसी तरह से रसायन विज्ञान में नागार्जुन। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हमारे देश में हुए हैं जिन्होंने एक तरह से विज्ञान की परंपरा की शुरुआत की। बाद में चलकर जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय, सीवी रमन, सत्येंद्रनाथ बोस, मेघनाथ साहा, श्री निवास रामानुजन, हर गोविंद खुराना, ऐसे बहुत से वैज्ञानिक हुए जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस पाठ का लक्ष्य भी यही है कि भारत की गौरवशाली जो वैज्ञानिक परंपरा है उसका आप ज्ञान प्राप्त कर सकें, जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हुई हैं उसे समझ सकें, और प्राचीन भारत की जो वैज्ञानिक परंपरा रही है और आज के समय में उस परंपरा का जिस तरह से विकास हुआ है उस विकास को भी समझ सकें। तो मैं संक्षेप में मुख्य मुख्य बिंदुओं को आपके सामने रखूंगा और मैं चाहूंगा कि इस चर्चा को सुनने के बाद आप अपने अध्ययन सामग्री को जाकर जरूर देखें और इसे समझने की कोशिश करें। देखिए, यह पाठ मुख्य रूप से ज्ञानवर्धक है, सूचनात्मक है और आपके पूरे जीवन में काम आने वाला है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएंगे तो वहाँ सामान्य ज्ञान की परीक्षा होती है, तो वहाँ पे इस तरह के वैज्ञानिक चमत्कारों और वैज्ञानिक योगदानों के बारे में भी पूछा जाता है। तो इसलिए आप ध्यान से इस चर्चा को सुने और मैं कोशिश करूँगा कि मुख्य बातें आपके सामने आ जाएं। अगर हम भारतीय विज्ञान के विभिन्न चरणों की बात करें तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि जिस समय यूरोप में घुमक्कड़ जातियां अपनी बस्तियां बनाना सीख रही थी, उस समय भारत में जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वह व्यवस्थित तरीके से सुनियोजित तरीके से चल रही थी। चाहे वह भवन निर्माण की बात हो, धातु विज्ञान की बात हो, वस्त्र निर्माण की बात हो, परिवहन व्यवस्था को देखें आप, ये सारी चीजें बड़े ही उन्नत अवस्था में थी। और गणित, ज्योतिष, रसायन, खगोल, चिकित्सा, धातु आदि विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान ने काफी उन्नति की थी। और जैसा कि मैंने बताया कि ईसा के जन्म के लगभग 200 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा के जन्म के बाद लगभग 11वीं सदी तक हमारा विज्ञान काफी उन्नत अवस्था में था। और जैसे मैंने बहुत सारे नाम आपको बताए थे, आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, बोधायन, न जाने कितने ऐसे वैज्ञानिक हुए, उनकी पूरी परंपरा चली आ रही है। अगर मध्यकाल की बात करें तो मुस्लिम काल में बहुत सी लड़ाइयां होती रही, उसकी वजह से वैज्ञानिक विकास की गति थोड़ी अवरुद्ध हुई, लेकिन भारतीय विज्ञान पर आधारित ग्रंथों का अरबी और फारसी में अनुवाद किया गया और भारतीय वैज्ञानिक परंपरा दूसरे देशों तक पहुंच गई। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। मुगल शासन के बाद शिक्षार्थियों, जब अंग्रेजों का शासन आया तो फिर से विज्ञान की परंपरा तेजी से विकसित होने लगी और अंग्रेजी शासन में ज्ञान विज्ञान के विविध स्रोत और संसाधन विकसित हुए और विविध क्षेत्रों में उपलब्धियां भी हुई। अगर पूरी भारतीय वैज्ञानिक परंपरा को हम विस्तार से समझना चाहते हैं तो उसे दो चरणों में बांटकर देख सकते हैं। पहला प्राचीन भारतीय विज्ञान और दूसरा मध्यकालीन तथा आधुनिक भारतीय विज्ञान। तो मैंने भूमिका में कुछ बातें आपको बताई थी, उसका हम यहाँ पर विस्तार से देखते हैं कि प्राचीन भारतीय विज्ञान का स्वरूप कैसा था। प्राचीन भारत में कई सभ्यताएं थी हमारी, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटड़ा आदि अनेक स्थानों पर अनेक खुदाइयां की गईं और वहां पे नगरों के खंडहर मिले हैं। उन नगरों में भवन, सड़कें या नालियां, स्नानागार, कोठार आदि पक्की ईंटों से बने हुए थे। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि उस समय जहाजों द्वारा विदेश से व्यापार भी होता था। उस समय के लोगों को माप तौल का ज्ञान भी था, परिवहन के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था और कांसे के बने हथियार और औजार भी मिले हैं। उस समय सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्न के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं और कठोर जो रत्नों को काटने और गढ़ने वाले उपकरण होते हैं वो भी पाए गए। इसके अलावा ऊनी और सूती वस्त्र बनाना उस समय के लोग जानते थे। तो इस तरह से आप समझ सकते होंगे कि हमारी सभ्यता कितनी विकसित हो चुकी थी। वैदिक काल के बारे में अगर आप देखें तो उस समय खगोल विज्ञान का काफी उस समय प्रयोग होता था। वैदिक भारतीयों को 27 नक्षत्रों का ज्ञान था। वे वर्ष, महीनों और दिनों के रूप में समय के विभाजन से परिचित थे। उसके अलावा अगर गणित और ज्यामिति के बारे में देखें तो वैदिक युग में उसका काफी विकास हुआ। उस समय 10 पर पावर 12 तक गिन सकते थे और यूनानी केवल 10 पर पावर 4 और रोमवासी 10 पर पावर 8 तक गणना करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने आगे थे। अगर वैदिक युग में चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो उस समय पोस्टमार्टम करना या प्राकृतिक जड़ी बूटियों का उपयोग करना या चिकित्सीय जो स्नायु तंत्र है, सुषुम्ना नाड़ी है, इसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। और अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति थी उसका सबसे अधिक उपयोग होता था। शल्य चिकित्सा भी की जाती थी और ऐसा भी प्रमाण मिला है कि रोम साम्राज्य में भारतीय जड़ी बूटियों की बहुत मांग थी। इसके अलावा वनस्पतियों और जंतुओं के बाह्य और आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन भी किया उस समय के लोगों ने। अगर कृषि के क्षेत्र में देखें तो मिट्टी की उर्वरता कैसे बढ़ाई जाए, फसल चक्र की क्या पद्धति होती है, इन सब का ज्ञान उस समय के लोगों को था। और अगर हम यह माने कि स्वर्ण काल क्या हो सकता है तो ईसा से पूर्व 4वीं शताब्दी से लेकर ईसा के बाद 6वीं या 7वीं शताब्दी तक हम स्वर्ण काल मान सकते हैं। उस समय सबसे ज्यादा आविष्कार किए गए। मौर्य काल में जो युद्ध के लिए अस्त्र और शस्त्र थे उनका विकास किया गया और सिंचाई की जो सुविधा थी उसके लिए उपकरणों का निर्माण किया गया। भू सर्वेक्षण की पद्धति का विकास हुआ। इस तरह से अनेक वैज्ञानिक जो कौशल थे उनका विकास उस समय किया गया। गुप्त काल में देखें तो कई उल्लेखनीय प्रगति हुई, जैसे बीज गणित, ज्यामिति, रसायन शास्त्र, भौतिकी, खगोल विज्ञान, ये सारे क्षेत्र काफी विकसित हो चुके थे उस समय और निरंतर आविष्कार हो रहे थे। तो यह एक पृष्ठभूमि थी कि प्राचीन भारतीय विज्ञान का पूरा स्वरूप क्या था। अगर हम अलग अलग क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों को देखें तो हमें और भी ज्यादा आश्चर्य होता है। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को हम ले लेते हैं और उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमारा विज्ञान कितने उन्नत स्तर पे था। जैसे पहला हम देख लें खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, तो इसमें जो आर्यभट्ट की खोज थी वह इस संदर्भ में थी कि पृथ्वी की गोल आकृति और वह धुरी पर किस प्रकार घूमती है उसके बारे में उन्होंने बताया था। और यह खोज उन्होंने जो जर्मन खगोल विज्ञानी कॉपरनिकस के बारे में आपने नाम सुना होगा, उनसे 1000 वर्ष पहले उन्होंने आर्यभट्ट ने यह बता दिया था। उसी तरह से न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया उसके बारे में जानकारी ब्रह्मगुप्त ने उनसे 1000 वर्ष पहले ही दे दी थी। यह अलग बात है कि पाश्चात्य वैज्ञानिकों को इसका श्रेय दिया जाता है। वैदिक काल में देखें तो उस समय ग्रहों की स्थिति को देखकर सारे कर्मकांड किए जाते थे और खगोल विज्ञान का बड़ा ही विकसित रूप हमें दिखाई देता है। सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन गति से वे लोग परिचित थे और उस समय का एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ था वेदांग ज्योतिष, और उसकी रचना लगभग नामक ऋषि ने ईसा से 100 वर्ष पूर्व लगभग की थी। अगर आप महाभारत को देखें तो उसमें भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की चर्चा है और वेदांग ज्योतिष के बारे में जो उसकी उपलब्धियां हैं वह भी उस समय दिखाई देती हैं। इसके अलावा 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने लोगों को बताया था कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। उन्होंने पृथ्वी के आकार, गति और परिधि का अनुमान भी लगाया था। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की सही जानकारी भी उन्होंने दी थी। तो इस तरह से आर्यभट्ट का योगदान आप लोगों को और विस्तार से देखना चाहिए। उन्होंने आर्यभट्टीय और आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथों की रचना की। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आर्यभट्ट के बाद 6वीं शताब्दी में वराह मिहिर नाम के खगोल वैज्ञानिक हुए। उन्होंने बताया कि कोई ऐसी शक्ति है जो वस्तुओं को धरातल से बांधे रखती है और उसी को बाद में गुरुत्वाकर्षण के नाम से बताया गया। उनकी भी बहुत सारी रचनाएं हैं जो आप विस्तार से देखिएगा। खगोल विज्ञान में एक और महत्वपूर्ण नाम है ब्रह्मगुप्त का, और उन्होंने बीज गणित का सबसे पहले प्रयोग किया और उन्होंने विभिन्न ग्रहों की गति के बारे में, उसके उदय और अस्त के बारे में पूरी गणना की है। इसके अलावा उन्होंने यह बताया कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं क्योंकि पृथ्वी की प्रकृति है कि वह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करे। तो उनका इस रूप में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान था। उसके बाद ब्रह्मगुप्त आते हैं। ब्रह्मगुप्त के बाद भास्कराचार्य आते हैं और उनका समय जो था 12वीं शताब्दी के लगभग था। वे गणित के प्रकांड पंडित थे और उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि और करण कुतूहल नामक ग्रंथों की रचना की और उन्होंने भी अनेक आविष्कार किए और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर उनका जो मत था वह बड़ा ही महत्वपूर्ण था। अगर गणित के क्षेत्र में बात करें तो अनेक गणितज्ञ हुए शिक्षार्थियों उस समय, जैसे ब्रह्मपुत्र, महावीर, भास्कर, और इनका जो प्रभाव है वह बाद में जो गणित का विस्तार हुआ उसमें दिखाई देता है। जैसे अंक गणित को देख लें तो हड़प्पाकालीन संस्कृति के लोगों को अंकों और संख्याओं से परिचय था, अन्यथा वे भवन, सड़क और स्नानागार आदि का निर्माण नहीं कर सकते थे। इसके अलावा माप तौल और व्यापार का भी उन्हें पूरा ज्ञान था, और यह भी अंकों के ज्ञान के बिना संभव नहीं था। वैदिककालीन भारतीय अंकों और संख्याओं का उपयोग करते थे सभी लोग, और एक ऋषि का नाम आता है मेघातिथि, जो 10 पर पावर 12 तक की संख्याओं से परिचित थे। और उस समय के जो ज्ञान का जो क्षेत्र था उससे यह काफी आगे बढ़कर था, क्योंकि जो दूसरे रोम वगैरह आदि जो सभ्यताएं साथ साथ बढ़ रही थी उनमें इतना ज्ञान का विस्तार नहीं हो पाया था। शून्य के बारे में उन्होंने, ब्रह्मगुप्त ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई कि शून्य को किसी संख्या से घटाने या उसमें जोड़ने पर उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या शून्य से किसी संख्या का गुणनफल भी शून्य होता है। इस तरह के अनेक स्थापनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, इन सब के बारे में आप विस्तार से भी जान सकते हैं। ज्यामिति के बारे में हड़प्पाकालीन लोगों को जानकारी थी, क्योंकि ईंटों की आकृति, भवनों की आकृति, ये सारी बातें ज्यामिति पर आधारित थी। उसके अलावा आर्यभट्ट ने वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात के बारे में जानकारी दी। अगर त्रिकोणमिति की बात करें तो उसमें वराह मिहिर का बहुत बड़ा योगदान था। बीज गणित का बड़ा व्यापक रूप हमें उस समय दिखाई देता है, जिसमें आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य आदि बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, और उन लोगों ने अनेक समीकरण भी दिए और उनका हल भी किया। चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षार्थियों देखें तो बड़ी लंबी परंपरा हमारे यहाँ रही, और जैसा मैंने पहले बताया कि आयुर्वेद का बड़ा प्रभाव था उस समय, और अथर्ववेद में भी भारतीय चिकित्सा पद्धति के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा आप अगर देखें तो चरक संहिता के बारे में आपने सुना होगा, वह काय चिकित्सा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, और उसमें चयापचय, पाचन और शरीर प्रतिरक्षा के बारे में बताया गया। इसके अलावा शरीर विज्ञान, निदान शास्त्र, भ्रूण विज्ञान के बारे में जानकारी दी गई। उसी तरह से आप सुनेंगे सुश्रुत संहिता के बारे में, यह शल्य चिकित्सा पद्धति का महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, यह ग्रंथ रहा है, और इसमें शल्य चिकित्सकों को लिए एक पूरी नई दिशा प्रदान की। इसमें नाक, कान और ओठ की प्लास्टिक सर्जरी का भी जिक्र हुआ है, और नाड़ी और श्वास की गति के बारे में भी जानकारी दी गई है। बाद में चलकर महर्षि पतंजलि हुए, जिनका नाम आपने सुना होगा, उन्होंने योग के माध्यम से निरोग रहने का उपाय बताया और असाध्य रोगों की चिकित्सा भी की। उसके अलावा पशु चिकित्सा भी बड़ी महत्वपूर्ण थी उस समय भारतीयों के बीच। भौतिकी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान हुआ, और परमाणुओं की संरचना, प्रकृति और प्रकारों की चर्चा की गई। रसायन विज्ञान में अनेक आविष्कार हुए, और पारे के बारे में, चांदी, सोना, टिन और तांबे के बारे में अनेक अनुसंधान किए गए। इसके अलावा अगर धातु विज्ञान की बात करें तो हड़प्पाकालीन संस्कृति में ही धातु विज्ञान का प्रयोग होता था, और धातुओं के अयस्कों की खोज उस समय की गई, और उस समय जिस प्रकार से प्राचीन दक्षता थी रसायन विज्ञान में धातु के बारे में, उसका उदाहरण आप दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार को देख सकते हैं, जो 4वीं शताब्दी में लौह स्तंभ बनाया गया था वह आज भी जंग विहीन है, इतने सालों के बाद भी। उसी तरह से कोणार्क मंदिर में भी 90 टन के भार वाला लोहे का स्तंभ लगा है, वह भी जंग विहीन है। तो उस समय के भारतीयों को धातु के बारे में बड़ा विस्तृत ज्ञान था। उसी तरह से रत्नों के बारे में भी बहुत विशेष ज्ञान उस समय के लोगों को था। वे हीरा, पद्मराग, मुक्ता, महानील, इंद्रनील, स्फटिक आदि न जाने कितने रत्नों के बारे में जानते थे और उसे किस तरह से काटते हैं और उसे गहने बनाते हैं, इसका भी ज्ञान उस समय के लोगों को था। इसके अलावा जलयान निर्माण में मध्यकाल तक भारत यूरोप से आगे था। वस्त्र निर्माण में भारत ने असाधारण दक्षता प्राप्त की थी और कपड़े रंगने के 100 से अधिक विधि विधान उनको पता थे, वनस्पतियां पता थी, खनिज पदार्थ पता थे। तो विज्ञान की अनेक शाखाओं में विज्ञान की उपलब्धियां हमें दिखाई देती हैं। 10वीं शताब्दी के बाद विदेशी आक्रमणकारी आने लगे भारत में, तो उससे अव्यवस्था और अराजकता फैली और मुस्लिम काल में ज्यादा विकास विज्ञान का नहीं हो पाया। लेकिन अंग्रेजों के आगमन के बाद विज्ञान के क्षेत्र में हम प्रगति देखते हैं और उस प्रगति को हम अनेक रूपों में समझ भी सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। अब थोड़ी बात हम कर लेते हैं आधुनिक भारतीय विज्ञान की परंपरा कैसी रही और कौन कौन से महत्वपूर्ण योगदान हैं जो भारत ने किए हैं। तो आधुनिक वैज्ञानिक परंपरा की बात हम शुरू करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद से। यहाँ आप यह बात जरूर ध्यान रखें कि जो आधुनिक वैज्ञानिक परंपरा है वह प्राचीन वैज्ञानिक परंपरा से बहुत अलग नहीं है, बल्कि उसी का अगला चरण है, क्योंकि पहले से जो परंपरा चली आ रही थी उसी का विस्तार किया गया। एक मूलभूत अंतर इसमें यह है कि आधुनिक समय में यांत्रिकी का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का काफी विकास हुआ और यांत्रिकी यानी मशीनी स्तर पर कई उपलब्धियां हासिल की गईं। अगर हम देखें तो प्राचीन समय में जो आविष्कार किए जा रहे थे उन्हीं आविष्कारों को यांत्रिकी के माध्यम से आगे बढ़ाया गया और उसकी वजह से अनुसंधान के अनेक रास्ते खुल गए। जैसे कंप्यूटर के विकास से रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान आदि क्षेत्रों में नए नए प्रयोग आसानी से होने लगे, विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया गया। तो आधुनिक वैज्ञानिक परंपरा के विकास के पीछे यह भी कारण था कि अंग्रेजों का ज्यादातर देशों में राजकाज था और इसकी वजह से जो एक देश और काल की सीमाएं थी वो समाप्त हो गई और अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने अपने अपने स्तर पर वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल की और एक दूसरे के साथ उसको साझा भी किया। तो इस पूरी परंपरा को हम दो भागों में बांट कर समझते हैं। पहली आधुनिक भारत की मौलिक वैज्ञानिक परंपरा। इस परंपरा के अंतर्गत उन वैज्ञानिक खोजों को रखा जा सकता है जो भारत में जन्मे और भारत में ही रहकर यहीं के संसाधनों से और यहीं के वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए। वैसे तो अंग्रेजों के आने के बाद ज्यादातर वैज्ञानिक खोज अंग्रेजों द्वारा की गई, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोग किए और उपलब्धियां हासिल की। जैसे 14 नवंबर 1941 को सीएसआईआर की स्थापना की गई और 26 सितंबर 1942 को सर ए रामास्वामी मुदालियर और डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के प्रयास के फलस्वरूप काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई। तो ये महत्वपूर्ण कदम थे जिनके द्वारा विभिन्न सामानों का उत्पादन हमारे देश में होने लगा। शांति स्वरूप भटनागर का नाम इस जगह जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के लिए बेहद परिश्रम किया और उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनका भरपूर सहयोग किया, जिसके कारण भारत में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापनाएं की गई और उनके माध्यम से विज्ञान का विकास शुरू हुआ। बाद में चलकर इंदिरा गांधी ने भी अनेक प्रयास किए और लाल बहादुर शास्त्री ने अधिक अन्न उपजाऊ अभियान से हरित क्रांति की शुरुआत की, जिससे अनेक क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रगति हुई। तो आज़ादी के बाद विविध क्षेत्र अगर हम लेना चाहें तो उसमें कृषि, चिकित्सा, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी, संचार, अंतरिक्ष, परिवहन और रक्षा विज्ञान के क्षेत्रों को शामिल कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि विकासशील देशों में भारत अग्रणी स्थान पे है। इन सभी क्षेत्रों में अनेक खोजें की गई हैं और अनेक उपलब्धियां भी हैं। अगर कृषि की बात करें तो आप जानते हैं कि लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है और इस क्षेत्र में अनेक प्रयास किए गए। जैसा मैंने बताया कि हरित क्रांति की शुरुआत की गई और खाद्यान्न उत्पादन में हमारा देश शीर्ष पर पहुंच गया। उसमें डॉक्टर बीबी पाल, डॉक्टर एसएम स्वामीनाथन और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का नाम प्रसिद्ध है। उसी तरह से कुरियन ने श्वेत क्रांति द्वारा दुग्ध उत्पादन में शीर्ष स्थान पर हमें पहुंचाया। इसके अलावा पशुपालन, मछली पालन, कुक्कुट पालन में भी हम स्वावलंबी बन गए और कृषि के क्षेत्र में कम समय में अधिक उपज देने वाली नई किस्म की और संकर जातियां विकसित की गई ताकि अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। और खाद्यान्न के क्षेत्र में अनेक अनुसंधान किए गए। 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्रयास से परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ और तब से लेकर आज तक ईंधन निर्माण, व्यर्थ पदार्थों से ऊर्जा उत्पादन, कृषि चिकित्सा, उद्योग एवं अनुसंधान में हम आत्मनिर्भर बन गए हैं। आप अन्य नाम सुना होगा, नाभिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, जिसको बार्क के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ अनेक परीक्षण किए जा रहे हैं, जैसे पोखरण 2 के बारे में आपने सुना होगा, उसके माध्यम से हम परमाणु शक्ति के क्षेत्र में जब 8-10 देशों में हम शामिल हो चुके हैं। तो ये सारे विशेष क्षेत्र हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में देखें शिक्षार्थियों, तो उसमें भारत में क्रांति ला दी है और कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से संचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। डिजिटल प्रौद्योगिकी का आज अत्यंत विस्तार हो गया है जीवन के हर क्षेत्र में। सुपर कंप्यूटर की बात आपने सुनी होगी और उसमें लगातार नए नए अनुसंधान किए जा रहे हैं। परिवहन के क्षेत्र में आप देख लें तो रेल, सड़क, जल, वायु, हर तरह के परिवहन में काफी तेजी से विकास हो रहा है और अनुसंधान हो रहा है। इसके अलावा अगर आधुनिक उपलब्धियों की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में जो उपलब्धियां हो रही हैं उसमें अनेक वैज्ञानिकों का नाम हम बड़े श्रद्धापूर्वक ले सकते हैं, जैसे जगदीश चंद्र बोस, सी वी रमन, होमी जहांगीर भाभा, शांति स्वरूप भटनागर, एम एन साहा, प्रफुल्ल चंद्र राय, हरगोविंद खुराना, ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पूरी एक विरासत को हमारे सामने रखा। और जगदीश चंद्र बोस ने लघु रेडियो तरंगों का निर्माण किया, चुंबकीय तरंगों का प्रयोग उन्होंने सबसे पहले किया। सी वी रमन प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रकाश किरणों की गुणधर्मिता और आकाश तथा समुद्र के रंगों की व्याख्या की, उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। उसी तरह से एस रामानुजम असाधारण प्रतिभावान गणितज्ञ थे, उन्होंने अनेक गणितीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एम एन साहा और एस एन बोस आदि अनेक अनेक लोगों ने योगदान दिया। स्वतंत्रता के बाद अगर हम देखें शिक्षार्थियों तो अनेक क्षेत्रों में उपलब्धियां हुई। भारत कच्चे माल के निर्यात से अब विश्व की सर्वाधिक मजबूत औद्योगिक व्यवस्था के रूप में बन गया है और आप पूर्णतः स्वदेश में निर्मित ध्रुवीय प्रक्षेपण यान की बात करें तो PCLV-C2 का को जो हरिकोटा से छोड़ा गया था और अब उसमें और संख्याओं में वृद्धि लगातार होती जा रही है। नए नए परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो अनुसंधान हो रहे हैं वह हमारे देश की प्रतिष्ठा को एक तरह से स्थापित कर रहे हैं। उसके अलावा आधुनिक भारत में एक और उपलब्धि ये हुई है कि मिश्रित वैज्ञानिक परंपरा का की शुरुआत हुई है, अर्थात विभिन्न देश मिलकर साथ साथ वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं और इससे अनेक खोजें हुई हैं। जैसे कंप्यूटर को ही ले लें हम, तो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो विभिन्न प्रयोग किए जा रहे हैं उसमें विभिन्न देश अपने अपने तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं। तो इस तरह से आज मिश्रित रूप में मिलजुल कर अनेक अनुसंधान किए जा रहे हैं और उससे लाभ यह हुआ है कि आज अनुसंधान हो रहे हैं उसका लाभ सभी देश ले सकते हैं, चाहे वह रक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मिसाइल रडार बनाने का क्षेत्र हो या रासायनिक उर्वरक का क्षेत्र हो, किसी उपकरणों का क्षेत्र हो, हर जगह पे यह जो है मिश्रित अनुसंधान का काम किया जा रहा है और इसमें अनेक उपलब्धियां भी हमारे सामने निरंतर आ रही हैं। तो इस प्रकार से हमने विस्तार से अनेक क्षेत्रों में जो भारतीय विज्ञान का जो श्रेय रहा है, उसकी जो उपलब्धियां रही हैं, उसको हमने देखा प्राचीन काल से लेकर और अभी तक का, और भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। हमारे देश के वैज्ञानिक विदेशों में भी जाकर विभिन्न अनुसंधान कर रहे हैं और बड़े बड़े कंपनियों में उच्च पदों पर स्थापित हैं, वे नीति निर्माण कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने इस बात को संक्षेप में देखने की कोशिश की। इसमें एक बार पुनरावृत्ति संक्षेप में हम कर लेते हैं। पहला बिंदु यह है कि भारत में प्राचीन काल से ही एक समृद्ध वैज्ञानिक परंपरा रही है, चाहे वह भवन निर्माण का हो, खगोल विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, धातु विज्ञान अथवा रत्न विज्ञान का, हर क्षेत्र में भारत में प्राचीन काल से ही विज्ञान का प्रयोग हुआ है और दुनिया के सामने भारतीय वैज्ञानिक परंपरा एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में मौजूद रही है। आधुनिक काल में CSIR की स्थापना की गई और अनेक प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है, विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं की स्थापना की गई है। इसके अलावा भारतीय अनेक वैज्ञानिक जैसे मेघनाथ शाह, सीवी रमन आदि का योगदान अमूल्य रहा है और आज मिश्रित वैज्ञानिक परंपरा की जो शुरुआत हुई है उससे पूरा विश्व मिलकर अनेक क्षेत्रों में अनुसंधान कर रहा है, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, भौतिकी का हो, इलेक्ट्रॉनिकी का हो, चिकित्सा का हो। तो आगे का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है और भारत का उसमें योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप इस पाठ को पुनः जाकर पढ़ें और जो प्रश्न दिए गए हैं आपको इस पाठ के अंत में, जैसे प्राचीन भारत की किन्हीं 5 वैज्ञानिक उपलब्धियों का नाम लिखिए, तो आप आसानी से बता सकते हैं। हमने अभी चर्चा कई उपलब्धियों के बारे में की है। या आपसे पूछा जाता है कि गणित के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का वर्णन करें, तो उसमें भी आप आसानी से लिख सकते हैं। या किन्हीं 4 भारतीय वैज्ञानिक संस्थाओं के नाम लिखिए, तो उनका भी जिक्र हुआ है। तो इस तरह से हमने इस पाठ को आज संक्षिप्त में देखने की कोशिश की है। आशा है आपको इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद।